di Prem, se conosci Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Radhika Raman Ji Ki Shri Shri Krishna Balaram Ki Jagannath Pandesh Subhadra Maharani Ki Shri Shri Gaur Nidai Ki Vrinda Devi Tulsi Maharani Ki Granthra Shrimad Bhagavatam Ki Srila Prabhupada Transcendental Bhagavad Gita Marathon Ki Nidai Gaur Premanande All Glories to Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavatam 8th skand adhyay sankhya 18 adhyay ka naam hai Bhagwan Vaman Dev Vaman Avatar shlok sankhya 2 se 5 श्लोक संख्या 2 से लेकर 4 तक का तात्पर्य नहीं है, मैं इनका केवल अनुवाद पढ़ दूंगा। श्लोक संख्या 2, भगवान का शरीर सांवले रंग का था और समस्त उन्मादों से मुक्त था। उनका कमल मुख मकराकृति जैसे कान के कुंडलों से सुशोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहा था और उनके वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह था। वे कलाइयों में कंगन पहने थे, सिर पर मुकुट लगाए थे, उनकी कमर में गर्दनी थी, छाती के आर पार जनेऊ पड़ा था और उनके चरण कमलों को पायल सुशोभित कर रहे थे। श्लोक संख्या 3, उनके वक्षस्थल पर असाधारण सुंदर फूलों की माला सुशोभित थी और फूलों के अत्यधिक सुगंधित होने से मधुमक्खियों का बड़ा सा समूह गुंजार करता हुआ शहद के लिए उन पर टूट पड़ा था। जब भगवान अपने गले में कौस्तुभ मणि पहनकर प्रकट हुए तो उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार दूर हो गया। श्लोक संख्या 4, उस समय सभी दिशाओं में नथी तथा सागर जैसे जलागरों में तथा सबके हृदयों में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। विभिन्न ऋतुएं अपने अपने गुण दिखाने लगे तथा उच्च लोक बाह्य आकाश एवं पृथ्वी पर के सारे जीव हर्षित हो उठे। देवता गायें ब्राह्मण तथा सारे पर्वत हर्ष से पूरित हो गए। श्लोक संख्या 5, श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिचिति प्रभु सर्वे नक्षत्राद्य सर्वे नक्षत्र ताराद्य चक्रस्तु जन्म दक्षिणम् श्रोणाय। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की श्रोणायाम। जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर था, श्रवण द्वादश्याम भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, जो श्रवण द्वादशी कहलाती है, मुहूर्ते शुभ क्षण में अभिजीति अभिजीत नक्षत्र में, जो श्रवण राशि का पूर्वाद्र है तथा अभिजीत मुहूर्त में मध्यान के समय प्रभु भगवान सर्वे सभी नक्षत्र तारे तारा लोक आद्या सूर्य आदि लोक चक्रु बनाया तत्जन्म भगवान का जन्मदिन दक्षिणम अत्यंत भव्य। श्रावण द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण ऋषि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि आदि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत दानी बन गए। तात्पर्य, निपुण ज्योतिषी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नक्षत्र ताराद्य शब्द की व्याख्या की है। नक्षत्र का अर्थ है तारे और इस प्रसंग में तारा का अर्थ है लोक या ग्रह है एवं आद्या का अर्थ है इत्यादि, विशेषकर वह जिसका वर्णन सर्वप्रथम हुआ है। तारों ग्रहों में पहला ग्रह सूर्य है, चंद्रमा नहीं। अतएव वैदिक कथन के अनुसार आधुनिक ज्योतिर्विद की यह मान्यता है कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है, स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। जिस क्रम में विश्व भर के लोग सप्ताह के दिनों के नाम लेते हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनिवार, वस्तुतः वेदों के अनुसार लोगों का क्रम ही है और इस कथन से वेदों की पुष्टि होती है। इसके अलावा जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्योतिष गणना के अनुसार तारे तथा ग्रह भगवान के जन्म को मनाने के लिए अत्यंत शुभ स्थान पर आ गए। ओम अज्ञानस्तमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पद्रुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। हरे कृष्णा, आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे कश्यप मुनि ने अपने भार्या माता दिति को बताया कि पयोव्रत का पालन करें और सभी दुखों से छुटकारा पाए। दिति माता ने कश्यप मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनकी आज्ञाओं को बहुत दृढ़ता से यथारूप पालन किया और केवल 12 दिन की तपस्या के बाद ही स्वयं भगवान के सामने प्रकट हो गए। तो इस अध्याय में बताया गया कैसे भगवान वामन देव प्रकट हुए और किस प्रकार से पिछले 3 श्लोकों में देखा कि सब के सब नक्षत्र सारे के सारे ग्रह शुभ स्थिति पे आ गए और सब बहुत ही अत्यंत दानी बन गए क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं। माया धक्षे न प्रकृति सोए ते सचराचरम। भगवान गीता में कहते हैं सारे के सारे नक्षत्र, सारे के सारे भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चल रही है और जब भगवान स्वयं प्रकट हुए तो सबके लिए एक बहुत ये सेलिब्रेशन का उत्सव का ये अवसर था और सबने एक उत्सव मनाया। आगे जाके और पढ़ेंगे कैसे उच्च लोगों के निवासी भी नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, तरह तरह के वाद्य मंत्र बजा रहे हैं। इसी ढंग से हम देखते हैं जब भगवान श्री कृष्ण का भी प्राकट्य हुआ कंस के जेल में, तभी ऐसी परिस्थितियां थी। कंस बहुत अत्याचार कर रहा था, ब्राह्मणों को यज्ञ करने से मना कर दिया था, गांवों की हत्या कर रहा था, कहीं भी यज्ञ नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान के प्राकट्य का समय हुआ उस समय कौन से नक्षत्र की स्थिति हुई? रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र जो स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा नियंत्रित होता है और सब जगह सबके मन बहुत प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों को अंदर से प्रेरणा मिली कि वो यज्ञ करें। सभी नदियों में प्रफुल्लित पानी था, पेड़ पौधे में फूल और फल खिल उठे, मंद मंद हवा चल रही थी, सुगंधित हवा थी और चारों तरफ खुशी का वातावरण था, सबके मनों में बड़ी शांति थी। और भगवान प्रकट हुए कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, यानी कोई भगवान चंद्रवंश में प्रकट हो रहे हैं तो चंद्रमा इतने ज्यादा उत्साह में थे, इतने ज्यादा आनंद में थे, बोलो अष्टमी हो या कुछ हो आज तो पूरा निकलना ही निकलना है। तो चंद्रमा पूरा निकल गया है, जैसे पूर्णिमा के दिन खेलते हैं। इसी ढंग से जब चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य हुआ फागुन की पूर्णिमा के दिन, तो उसमें पूर्णिमा थी और चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। लेकिन राहु ने सोचा कि जब स्वयं चैतन्य सुंदर चैतन्य प्रकट हो रहे हैं और वो ऐसे चंद्र के समान है जिनमें कोई कलंक नहीं है, तो ऐसे कलंक वाले चंद्र की क्या आवश्यकता है, आज उसको पूरा ढक लूंगा। तो उन्होंने पूरा चंद्र ग्रहण लगा दिया और जब चंद्र ग्रहण लगा तो सारे के सारे जो हिंदू थे वो बाहर आ गए, गंगा में स्नान कर रहे हैं और सबके सब भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हिंदू लोग भी भगवान का नाम ले रहे हैं, हरि और कृष्ण बोल रहे हैं और मुसलमान भी उनका मजाक उड़ाते हुए हरि और कृष्ण बोल रहे हैं। तो चारों तरफ भगवान का नाम का गुणगान हो रहा है और इसके बीच में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। तो हम देखते हैं कि जब भगवान का प्रकट्य होता है, भगवान के भक्तों का प्रकट्य होता है, तो सारे के सारे नक्षत्र बहुत शुभ स्थिति में आ जाते हैं। इसी के साथ हम भागवत में तीसरे स्कंध में देखते हैं, जब दीति माता ने कश्यप मुनि से जबरदस्ती करके उनसे संग किया संध्या के समय, जो कि समय सही नहीं था पति और पत्नी का संग करने के लिए, तुमको जबरदस्ती उनसे संग किया तो क्या हुआ? उस समय उनके घर में किन्होंने प्रवेश किया? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने। तो उस समय पूरे ब्रह्मांड में अशुभ घटनाएं होने लगी, चारों तरफ अंधकार छा गया और बहुत भयानक आवाजें आने लगी, और स्वयं दिति घबरा गई, डर गई, और कश्यप मुनि ने बताया कि तुम्हारे घर से दो महान असुर पैदा होने वाले हैं। तो ये सब हम समझ सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। इसी ढंग से हम देखते हैं भागवतम के पहले स्कंद के 14वें अध्याय में, जब भगवान अप्रकट हो गए, नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बता दिया कि भगवान अप्रकट होने वाले हैं। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा द्वारका में, जाओ खबर लेके आओ यदुवंशियों की, कृष्ण की। और अर्जुन को गए 7 महीने हो गए, कोई खबर नहीं, कोई सूचना नहीं। तो युधिष्ठिर को भय लगने लगा और युधिष्ठिर को चारों तरफ अपशकुन दिखाई देने लगे। वो अपशकुन कैसे थे? जब भगवान अप्रकट हुए तो युधिष्ठिर महाराज को दिख रहा था, उन्होंने देखा सनातन काल की गति बदल गई, और यह अत्यंत भयावह था। काल की ही गति बदल गई, ऋतु संबंधी नियमताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे, जो सीजनल रेगुलेशंस हैं, जो ऋतु के नियम हैं, उसमें गड़बड़ हो रही थी। ये आजकल हम देखते हैं, अक्सर हम देखते हैं इस साल में 13 जनवरी के बाद गर्मी शुरू हो जाती है, शीत थोड़ी कम हो जाती है, अब 13 जनवरी के बाद शीत लहर शुरू हुई है। पूरा हम देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी के समय कभी भी ठंड हो जाती है, कभी भी किसी समय वर्षा हो जाती है। तो जो ऋतु में गड़बड़ होती है, इसका मतलब क्या है कि भगवान अप्रकट है, धर्म का पालन नहीं हो रहा। आगे, सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए। यहां किसी को अनुभव है, किसी ने किसी को धोखा दिया हो? वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से जीविका नहीं कमा रहा, कैसे कमा रहे हैं? अनुचित साधनों से। आगे उन्होंने क्या देखा? ये बातें हमारे लिए तो कॉमन है, बोले क्या बता रहे तू, साधारण बात है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के राज्य में ये बड़े अपशकुन के लक्षण थे। आजकल तो इसको शकुन माना जाता है, लड़के और लड़की का जब विवाह तय हो रहा होता है, बोला कितनी तनख्वाह है, ये है ऊपर से इतना है। तो बोले हाँ, फिर ठीक है, सिक्योरिटी महसूस होती है, ऊपर से भी कमाई है, तो उसको नॉर्मल माना जाता है। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक, कपट के कारण दूषित हो गए थे। हर ट्रांजेक्शन में, हर रिलेशनशिप में क्या था? कपट। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलत फहमी होती थी, बात बात पे गलत फहमी। नॉर्मल है हमारे लिए, लेकिन ये अपशकुन है। यहां तक कि पति और पत्नी के बीच भी सदैव तनाव और झगड़ा होता रहता था। तो ये सारे अपशकुन के लक्षण देख रहे थे। काल क्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ क्रोध गर्व के इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा, कुछ गड़बड़ है। और बाद में जब अर्जुन आते हैं तो अर्जुन का मुख बिल्कुल सूखा हुआ, सारे चेहरे की लालिमा गायब, और अर्जुन इतने दुखी थे। और अर्जुन ने बताया कि मैं वही अर्जुन हूं, मेरा वही गांडीव है, वही के वही मेरे बाण हैं, वही के वही मेरा रथ है, वही के वही मेरे घोड़े हैं। जो राजा लोग मुझे देखकर मेरे आदर से मुझे नमस्कार करते थे, आज वही अर्जुन जब कृष्ण की रानियों को लेकर आ रहा था तो साधारण ग्वालों से हार गया, और ऐसा लगा कि मेरी सारी की सारी शक्ति एकदम क्षीण हो गई, और जैसे कि कोई राख पर घी डाल रहा हो और अग्नि प्रज्वलित हो ही नहीं रही। तो अर्जुन को ऐसा अनुभव हुआ, लेकिन अर्जुन ने फिर एक बात फिर आगे कही, लेकिन जैसे ही मैंने भगवान के दिए हुए संदेशों को का स्मरण किया, मुझे पुनः शक्ति प्राप्त हो गई। तो श्रीला प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में लिख रहे हैं कि आज भी हम कृष्ण को अपने जीवन में ला सकते हैं, कृष्ण के आदेशों का स्मरण करके, कृष्ण के नाम का जप और कीर्तन करके, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करके। कृष्ण की लीलाओं को बोला जाता है ध्यान मंगलम, श्रवण मंगलम। कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार। इसी ढंग से हम देखते हैं माता कुंती भी भागवतम के पहले स्कंद में ही प्रार्थनाएं करती हैं कि जब तक कृष्ण आप यहाँ पे इस धराधाम पे हैं, आपके चरण कमलों के चिन्हों से ये पृथ्वी सुशोभित हो रही है और ये हमारा असली धन है। और साथ में क्या, जब तक आप इस धराधाम में हैं, पूरी की पूरी प्रकृति हमारा सहयोग दे रही है। सभी जलाशयों में पानी है, पृथ्वी में सारे खनिज पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं और सबकी सब प्रकृति हमारे साथ हमारा सहयोग दे रही है। और जब कृष्ण नहीं होते, जब धर्म का पालन नहीं होता, तो प्रकृति भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हम संदेश इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। हम सब अपने जीवन में चाहते हैं कि सब कुछ शुभ शुभ हो, है ना। हम सब अपना जन्म लेते हैं, जन्म के साथ हमारे जन्म के समय भी कुछ नक्षत्रों की स्थिति होती है ना? कैसा बुध है, कैसा गुरु है, क्या राहु है, क्या सूर्य की दशा है, क्या चंद्र की दशा है, हम सब ने अपनी कुंडली बनाई होती है। और हम देखते हैं हमारा भाग्य कैसा होगा। हर एक अक्सर माता पिता बहुत चिंतित रहते हैं, अच्छे ज्योतिष के पास जाते हैं, जन्म कुंडली बनवाते हैं और हमें चाहते हैं कि हमारा पूरा जीवन शुभ शुभ हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, और उसके लिए हम कुछ भी उपाय करने को तैयार होते हैं। लेकिन वास्तविक जो शुभ घटनाएं हमारे जीवन में घटेंगी, वो तभी घटेंगी जब हमारे जीवन में कृष्ण होंगे। बिना कृष्ण के कुछ भी शुभ नहीं हो सकता। ये हमारी गलत फहमी है कि संसार में कुछ शुभ है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भौतिक जीवन सारा का सारा अशुभ है, इनऑस्पिशियस है सारा का सारा जीवन। चैतन्य महाप्रभु ने भी सनातन शिक्षा में बताया, द्वैत भद्र अभद्र ज्ञान सब मनोधर्म, यही भाव यही मन यही सब भ्रम। ये ड्युअलिटी है, ये द्वंद है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये सारा मनोधर्म है, मन की कल्पना है। यही भाव यही मन, ये अच्छा ये बुरा, यही सब भ्रम, ये भ्रम है। श्रीला प्रभुपाद क्या उदाहरण देते हैं, भौतिक सुख गीला मन, भौतिक दुख सूखा मन है, सबका सब मल। तो सूखा मल गीले मल को देख के मजाक उड़ा रहा है, हा 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 तू तो सूखा है मैं गीला हूं, लेकिन है तो क्या, वो भी मल ही मल है। इसलिए हम लोग साधारण भक्ति करते हुए भी हमारे हृदय में ये इच्छा रहती है कोई भौतिक दुख ना आए। बस बहुत डर लगता है, भक्तों से ही बातचीत करते हैं, मैं स्वयं भी देखता हूँ, बहुत डर लगता है बुढ़ापे से, बहुत डर लगता है तरह तरह की बीमारियों से, बहुत डर लगता है मृत्यु से। लगता है नहीं लगता, आप में से कितने लोगों को लगता है अभी डर लगता है? अगर बीमारी आ गई, तरह तरह की बीमारियां सुन रहे हैं, बुढ़ापा देख रहे हैं, बूढ़े भक्तियों की कंडीशंस देख रहे हैं, मृत्यु देख रहे हैं, और हृदय में इच्छा होती है भगवान बस ये ठीक रखना, भक्ति होती रहे, ये सब कहीं गड़बड़ ना हो, और चिंता भी रहती है इस बात की। लेकिन चिंता ये नहीं रहनी चाहिए, ये तो होंगे ही होंगे, ये तो इस संसार की कंडीशंस हैं ही, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन हम अपने नक्षत्रों की स्थिति कैसे बदल सकते हैं, अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग करके। हमारे नक्षत्र जिस स्थिति में हैं, इनमें नक्षत्रों का दोष नहीं है। कई लोग बोलते हैं शनि ने तो मेरी ऐसी तैसी कर दी, राहु तो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा, जो काम धंधा खोलता हूं ठप हो जाता है। तो हम ग्रहों को नक्षत्रों को ब्लेम करने से कोई लाभ नहीं। ये नक्षत्रों की स्थिति हमारे अनुकूल या प्रतिकूल दिशा में इसलिए आई क्योंकि पूर्व जन्मों में हमने अपनी स्वेच्छा का फ्री विल का सही उपयोग नहीं किया। और अब जिन परिस्थितियों में आए हैं, अब हम अपनी स्वेच्छा का उपयोग कैसे करते हैं, इससे क्या होगा, हमारे अगले जन्म की कुंडली बनेगी। ये हमारे क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, कैसे बदल सकते हैं। श्री राधिक रमन कृष्ण बलराम की अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। भाग्य के अनुसार हमें कुछ चीजें कुछ इंसिडेंट्स हमारे जीवन में होंगे ही होंगे, निश्चित रूप से होंगे, वो कुछ सुख या कुछ दुख के क्षण हमारे जीवन में आएंगे ही आएंगे। अब इस जीवन में जब वो क्षण हमारे पास आएंगे, हम अपनी स्वेच्छा का कैसा उपयोग करते हैं, हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है, उससे हमारे अगला भाग्य निर्धारित होगा। समझ लीजिए हमारे भाग्य में है कि आज हमने भागवतम क्लास अटेंड की और साथ में इसके बाद प्रसाद नहीं मिला, जब तक हम पहुंचे प्रसाद खत्म हो गया, खत्म, कूपन में ले लिया फिर प्रसाद खत्म, हमारे भाग्य में। तो एक तो है बोलो ठीक है भाग्य है, आज फास्टिंग टू नोन करते हैं, कोई बात भाग्य मान लिया, और एक है नहीं कैसे खत्म हो गया ऐसे की तैसे, ये क्या मतलब है, क्या सिस्टम है ना, लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट किया, कुछ आरोप लगाया, तो क्या कर दिया हमने, एक नया कर्म जनरेट कर दिया। परिस्थितियां आएंगी, उन परिस्थितियों के प्रति हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इससे हमारा अगला भाग्य बनेगा। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि अचानक एक साधक के मन में काम वास्ते उजागर होनी शुरू हो जाती है, होता है, सही सही चलते थे अचानक हो गया एक तक, फिर क्या करें, फ्री विल फिर भी हमारे पास है, स्वेच्छा जो है फ्री विल है, ये कृष्ण के द्वारा दिया हुआ बहुत सुंदर उपहार है एक जीवात्मा के पास, और उससे सुंदर उपहार है मनुष्य शरीर जिसमें स्वेच्छा का सही उपयोग कर सकता है। निम्न योनियों में तो कोई फ्री विल इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, वो तो पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। तो हालांकि परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं, विकट परिस्थितियां भी आ सकती हैं, कुछ प्रलोभन भी आ सकते हैं, लेकिन उस समय हमारी स्वेच्छा कैसे है, कैसे हम इसका उपयोग करते हैं, हम चाहे तो भक्तों के संग में रह के और दृढ़ता से भगवान की शरण लेके उन क्षणों को हम पार कर सकते हैं। तो ये मनुष्य शरीर में विशेष हमारे ये एक हमारे पास उपहार है। तो हमें पूरा कन्विक्शन होना चाहिए कि भौतिक जीवन में कुछ भी शुभ नहीं है और आध्यात्मिक प्रगति पूर्ण रूप से शुभ है। आध्यात्मिक प्रगति हमें ऊपर उठाती है। श्री प्रभुपाद भगवद गीता के छठी अध्याय के 40वें श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, कौन सी क्रियाएं शुभ मानी जाएंगी। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसी क्रियाएं जो हमें आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाएं, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर ले जाएं, वो क्रियाएं क्या हैं, शुभ है। हो सकता है दिखने में वो कष्टदायी हो। हम लोग क्या किसको शुभ मानते हैं कि जो परिस्थितियां जो कार्य शरीर और मन के लिए कंफर्टेबल है बड़े शुभ है, भगवान की बड़ी कृपा हो गई आज मेरे तो टिकट में वेटिंग लिस्ट था, टिकट मिल गई, बड़े कृपा हो गई, हम इन छोटे छोटे सुखों में बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ ये सब शुभ हो रहा है। और कुछ चीजें हमारे मन के हिसाब से ना हो ये हो तो बड़ा अशुभ लगता है, लेकिन ये शुभ और अशुभ के क्राइटेरिया नहीं है। जो भी कार्य हमारा शास्त्र सम्मत होगा, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होगा, वो कार्य शुभ है, ऑस्पिशियस है, चाहे वो हमारे शरीर और मन के लिए सुखदायक है या दुखदायक है। मंगल आरती में उठना सुबह सुबह सर्दी में शरीर और मन के लिए बड़ा कष्टदायक है, लेकिन ये शुभ है कि अशुभ है। कोई नया नया बोलेगा क्या सुबह सुबह 3:30 में अलार्म लग गया, मेरा तो भाग्य फूट गया, मैं कहाँ आ गया ना, जब से भक्तों के संग में हम सो भी नहीं पा रहा सही ढंग से, है ना, दुर्भाग्य लगा, नहीं ये शुभ है, सुबह सुबह उठ के नाचना, आहा 4:30 कोई नाचता है कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग, आप देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं, सुबह सुबह 4:30 नाचना शुरू कर देते हैं, है ना, तो ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन उठना बड़ा कष्टदायक है। तो जो कार्य ये भौतिक प्रकृति हमेशा हमें नीचे लाएगी, अशुभ की ओर ले जाएगी, और आध्यात्मिक प्रकृति हमेशा हमें हमारे जीवन में शुभता लाएगी। श्रीमद् प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो देखिए प्रभुपाद को कितना विश्वास था भगवान की अंतरंगा शक्ति में। सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने जो मंदिर खोला, वो मंदिर पहले क्या था, शवागृह था, जहां शव रखे जाते थे। कोई आम व्यक्ति को बोलो यहां रहोगे, ओह डर जाएगा, यहां शव थे, शव स्टोर किए जाते। प्रभुपाद नहीं, हरि नाम होता है, चलो मंदिर बनाया वहां पे। मॉन्ट्रियल में गए, कहां मंदिर खोले, एक बॉलिंग एले जहां बॉलिंग खेलते हैं आप देखा होगा, तो वहां पे उसको मंदिर बना दिया। तो जहां भगवान का श्रवण कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, वहां सब शुभ ही शुभ होगा, ये पूरा कन्विक्शन हमें होना चाहिए। और भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है, चाहे वो हमारे शरीर और मन के लिए कितना ही सुखदायक क्यों ना हो। तो ऐसी परिस्थितियां जो हमें कृष्ण का स्मरण कराए, ऐसी परिस्थितियां जो भक्तों के संग में लाएं, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा स्थान जहां हम कृष्ण और गुरु पर निर्भर हो रहे हैं, वो स्थान हमारे लिए, वो परिस्थितियां, वो संघ हमारे लिए शुभ है। और ऐसी परिस्थितियां, ऐसे स्थान, ऐसा संघ जो हमें कृष्ण और गुरु के आदेशों से दूर ले जाए, चाहे दिखने में कितना ही सुखदायक क्यों ना हो, वो सबका सब अशुभ है। कौन से उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में जहां की दिखने में परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल हैं, लेकिन उसको शुभ बना दिया गया? बहुत से उदाहरण है शास्त्रों। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र कष्टदायक परिस्थिति में था, जैसे ही भगवान का स्मरण किया, भगवान वहां प्रकट हो गए, ये पूरी की पूरी घटना कितनी शुभ हो गई। गोवर्धन लीला, इतने बड़े कष्ट में सबने कृष्ण का स्मरण किया। द्रौपदी चीरहरण, परीक्षित महाराज को श्रृंगी ने श्राप दे दिया, एक सप्ताह में आपकी मृत्यु होने वाली है, अगर हमें डॉक्टर के पास जाएं, बुरा मत मानिए, और कोई बोले ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज, एक सप्ताह में आप जाने वाले हो, कैसा रिस्पॉन्स होगा? डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, इधर उधर भागेंगे। कंस को बताया, आठवां पुत्र देवकी का आपका वध करेगा, तब तक बेचारा डरा रहा, आठवां पुत्र, कम से कम आठ नौ साल तो लगेंगे। लेकिन परीक्षित महाराज को लगा कि 7 दिन, परीक्षित महाराज के पास भी महायोगी थे, परीक्षित महाराज चाहते तो क्या करते, रिएक्ट कर सकते थे, श्रृंगी को दोबारा श्राप दे देते। बोला ये तो बहुत अच्छा मौका है, अरे क्यों ना मैं सारा वाइंड अप करूं, भगवान की इच्छा ये है कि सारा राजपाट वाइंड अप करूं और आगे बढ़ूं। अपने पुत्र को सारा राज्य दिया और गंगा के तट पे गए सब ऋषियों के बीच में और पूछा कि मनुष्य का सबसे परम कर्तव्य क्या है, विशेषकर उसका जो बिल्कुल मरने की कगार पे है। तो क्या बोला परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने, भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मरतव्य इच्छताम अभयम। अगर हम अभयम चाहते हैं, सारे के सारे कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, तो क्या करें, श्रवण कीर्तन और स्मरण करें भगवान हरि का। तो इस ढंग से परीक्षित महाराज ने, कितनी प्रतिकूल परिस्थिति थी, उसको कितना शुभ बना दिया। पूरे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषिगण एकत्रित हो गए, क्या देखते हैं ये महाभागवत कैसे भगवत धाम वापिस जाता है। ये बड़ा दृश्य देखने वाला था, वाह एक सप्ताह के अंदर ये भगवत धाम जाएंगे, कैसे जाएंगे, वैसे तो ये मृत्यु लोक है, प्रतिक्षण कोई ना कोई मर रहा है, लेकिन परीक्षित महाराज कैसे शरीर छोड़ेंगे, इसको देखने के लिए बड़े बड़े ऋषिगण एकत्रित हो गए वहां पर देखने के लिए। इतना सुंदर दृश्य। इसी रंग से हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में शिवानंद सेन सब भक्तों को ले आते थे बंगाल से उड़ीसा, और एक बार नित्यानंद प्रभु उनके साथ जा रहे थे, तो कहीं टोल टैक्स में खड़े हो गए शिवानंद सेन, लेट हो गए, तो इस गांव में पूरी की पूरी पार्टी पहुंची तो वहां कोई अकोमोडेशन देने वाला ही नहीं, हो जाते ना ऐसे। बाकी लोग पहले पहुंच गए और बुकिंग है और भक्त लोग खड़े हैं, कमरा बुक ही नहीं हो रहा, परेशानी होती है नहीं होती होती है, खड़े रहो कमरा ही नहीं दे रहे कोई। नित्यानंद प्रभु के साथ भी ऐसा हुआ, स्वयं नित्यानंद प्रभु बलराम जी को कमरा नहीं मिल रहा और वो खड़े हैं, और कमरा भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, बोले मैं इतनी भूख लग रही है मैं मर जाऊंगा, कहां है शिवानंद सेन, कहां, क्या तरह का अरेंजमेंट किया, उसके तीनों के तीनों पुत्र मर जाए मैं श्राप देता हूं। आपको आइडिया नहीं दे रहे ऐसा कि आपको कमरा ना मिले तो आप ही श्राप दे, थोड़े तीनों पुत्र उसके मर जाए। और जब शिवानंद सेन की पत्नी ने यह सुना, वो जोर जोर से रोने लगे, हाय क्या श्राप दे दिया, मेरे तीनों पुत्र मर जाए। एक तो पहले शिवानंद सेन सबको फ्री में लाते थे, इतनी मेहनत करते थे, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बोलो तीनों बेटे मर जाए, वो सारी जोर से रोने लगे। तभी नित्यानंद प्रभु आए, बोले क्यों रो रही है, बोले इसने श्राप दे दिया नित्यानंद जी ने कि हमारे तीनों बेटे मर जाए। तो बोले अगर तीनों बेटे मार के नित्यानंद प्रभु संतुष्ट होते तो रो क्यों रही है, और मैंने इतने कष्ट पहुंचाए हैं नित्यानंद प्रभु को, जो वो कह रहे हैं जो हो कोई बात नहीं, चिंता क्या बात है। वो जब शिवानंद से नित्यानंद प्रभु के पास गए, अभी भी नित्यानंद प्रभु कष्ट जो गुस्सा शांत नहीं हुआ था, जोर से लात मारी उनके बक्ष पे, ना खाने को दिया ना रहने को दिया। तो तब भी शिवानंद सेन ने बोला, वाह मेरा कितना सौभाग्य है, आपके चरणों की धूल, जिसके लिए ब्रह्मा जी और शिव जी लालायित रहते हैं, स्वयं आपने भी अपने चरणों की धूल दे दी, ये तो मेरे जीवन की सिद्धि है। जब इस ढंग से उन्होंने रिस्पॉन्ड देखा शिवानंद सेन का, नित्यानंद प्रभु जो अवधूत है, उन्होंने उनको आलिंगन कर लिया। तो ये भक्त लोग दिखा रहे हैं गुरु साधु और शास्त्र, हम देखें परिस्थितियां आती हैं विकट, हम कैसे उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। श्रीवास ठाकुर जी के घर में कीर्तन हो रहा है और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, 7 घंटे का कीर्तन चलता रहा। श्रीवास ठाकुर गए, घर की स्त्री को बताया, देखो रोना धोना कर लो जोर से नहीं, महाप्रभु के संकीर्तन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। और 7 घंटे के बाद महाप्रभु ने देखा कि कुछ घटना घटी है इस घर में, तो उन्होंने पूछा कुछ गड़बड़ है, तो भक्तों ने बताया कि इनका पुत्र की मृत्यु हो गई। महाप्रभु की आंखों में आंसू आ गए, महाप्रभु ने तुरंत श्रीवास ठाकुर का आलिंगन कर लिया। और महाप्रभु तब सोच रहे थे कि मैं संन्यास लूंगा, महाप्रभु ने सोचा ऐसे भक्तों को छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ, कि पुत्र की मृत्यु होगी और उसने बताया भी नहीं और मेरे साथ उत्साह से कीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु तुरंत उस कमरे में गए जहां उनके पुत्र का शव पड़ा था और महाप्रभु ने बोला, हे पुत्र इतनी जल्दी क्यों चले गए? और उस पुत्र ने जवाब दिया, हे स्वामी मैं तो आपका दास हूं, आपकी इच्छा से मुझे जहां जाना है जाऊंगा, आप तो नियंता है और आपके नियंत्रण में ही तो मैं हूं। जब मृत पुत्र को बोलते हुए सब देखा, सभी स्त्रियों का सभी परिवार वालों का शोक दूर हो गया और महाप्रभु ने पूरे अंतिम संस्कार में भाग लिया। और अंत में महाप्रभु ने बोला मालती माता को कि तुमने एक पुत्र खोया है लेकिन 2 पुत्र पाए हैं, मुझे और नित्यानंद, और मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तो इसलिए भक्त लोग के ऊपर जब कष्ट आते हैं, उन कष्टपूर्ण स्थिति को भी हम बहुत शुभ बना सकते हैं, किसकी शरण लेके? कृष्ण की शरण लेके। और ये बहुत सुंदर अवसर है, ये भक्तों के लिए परीक्षा है। श्रीला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं, ये जो भौतिक जगत है एक लेबोरेटरी के समान है। लेबोरेटरी में क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो भक्तों के लिए हर स्थिति जो है एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है, हमारी परीक्षा ली जा रही है कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा। नक्षत्रों को चेंज करने की परिस्थिति का ध्यान ना दें, हम क्या ध्यान दें, अपनी स्वेच्छा का कैसे हमने उपयोग करना है। देखिए हम सबकी आयु तो बढ़ रही है, जो लोग अभी 15 साल से कम है उनको तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी आयु बढ़ रही है ना? आपको याद होगा बचपन में जब कोई 10, 11, 12 साल के होते हैं, हम सोचते हैं कब हम बड़े होंगे, हम भी शेव करेंगे, अभी तो स्कूल में वही यूनिफॉर्म डालनी पड़ती है, तब नए नए कपड़े डाल के जाएंगे, फ्री होंगे, तो उस समय ग्रो करना अच्छा लगता है। 20, 21 कब विवाह होगा, आहा कब ये होगा, फिर ये होगा, तब आयु बढ़ रही है बड़ा अच्छा लगता है। और धीरे धीरे जब 30 के बाद जब आयु बढ़ती है तो बड़ा बुरा लगता है, तब डर लगना शुरू हो जाता है, यहां दर्द वहां दर्द, ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर बढ़ना, सब शुरू हो जाता है। अब आयु जाकर इस स्थिति में यहां जो बैठे हुए लोग हैं 30 से ऊपर के ज्यादा के लोग हैं, आयु तो बढ़ेगी बढ़ेगी और आयु के साथ साथ कष्ट तो बढ़ेंगे ही पड़ेंगे। इसको हम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। बुढ़ापे की या बढ़ती हुई आयु की कष्टमय स्थिति से बढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी चेतना को उन्नत करें। जब चेतना उन्नत हो जाएगी तो बुढ़ापे के कष्ट में भी हम दुखी नहीं होंगे। जैसे शिला प्रभुपाद इतने वृद्ध अवस्था में भी एकदम युवा थे, सारा मतलब चेतना का है। और अगर हम कहें नहीं, किसी ना किसी ढंग से कुछ ना कुछ जाओ जुगाड़ करो यहां वहां से मेरा जो कष्ट कम हो जाए, वो तो कष्ट कम होगा नहीं, चेतना भी दूषित हो जाएगी तो कष्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। जैसे कि चैतन्य चैतन्य की मध्य लीला में जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। महाप्रभु बताते हैं सनातन गोस्वामी को कि एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था, उसके घर में एक एस्ट्रोलॉजर आया, ज्योतिष आया, जिसका नाम था सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ उस निर्धन व्यक्ति से बोला, तुम क्यों इतने दुखी हो, तुम जानते नहीं तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए धन छोड़ कर गए हैं। तो जैसे उसको मालूम चला उसका सारा कष्ट दूर हो गया, अरे मेरे पिताजी धन छोड़ के गए हैं। इसी ढंग से महाप्रभु बता रहे हैं कि जब इस संसार में भटके हुए जीव को वैदिक शास्त्रों के द्वारा मालूम चलता है अरे कृष्ण मेरे असली पिता हैं, कृष्ण से मेरा संबंध है, तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन केवल इतना जानना कि मेरे पिताजी ने धन छोड़ा है, उसका गरीबी तो उसकी दूर नहीं हुई ना, उस ज्योतिष को क्या बताना पड़ेगा कि वो धन कहाँ है, तो बताना पड़ेगा। इसी ढंग से केवल गुरु की शरण ले ली तो उससे तो कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे, क्या करना पड़ेगा? गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि बस दीक्षा ले लें, दीक्षा लेने से क्या होगा, हमारे पाप कट जाएंगे। बस दीक्षा से केवल पाप नहीं कटते। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने क्या कहा है, कर्माणि निर्धारयति किन्तु च भक्ति भाजाम, जो हमारे कर्म कटते हैं भक्ति से कटते हैं, दीक्षा से नहीं। दीक्षा लेने के बाद आज्ञा पालन करने से कर्म कटेंगे, केवल दीक्षा लेने मात्र से कर्म नहीं कटेंगे। तो इसलिए उस एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया, ज्योतिष ने बता दिया, धन छोड़ गए हैं। एक कहां धन है, उसको जब तक प्राप्त नहीं करेंगे दरिद्रता तो दूर नहीं होगी। गुरु की शरण ले ली, एक गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया तो असली महाधन को तो हम प्राप्त नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, उन्होंने बताया कहां उस धन को खोजना है। तो बोला अगर तुम दक्षिण दिशा में खुदाई करोगे तो तुम्हें तरह तरह के कीड़े मकोड़े काटेंगे, तो तुम धन को छू भी नहीं पाओगे। और अगर पश्चिमी दिशा में खुदाई शुरू करोगे तो एक बहुत बड़ा भूत आ जाएगा और वो फिर तुम्हें तंग करेगा। और अगर उत्तरी दिशा में खुदाई करोगे तो एक बड़ा भयानक काला सांप तुम्हें डराएगा। लेकिन पूर्वी दिशा में जैसे ही खुदाई करोगे तभी तुरंत तुम्हारे हाथ में धन लग जाएगा। तो क्या तुलना कर रहे हैं इसके, तो महाप्रभु बता रहे हैं ये दक्षिण पश्चिमी और उत्तरी दिशा किसके समान है, कर्म ज्ञान और योग ध्यान के समान। इनसे हम कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, इनसे हमें कोई महाधन प्राप्त नहीं होने वाला। केवल भक्ति ही वो महाधन है जिससे हमारे सारे के सारे कष्ट दूर होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधे प्रयोजन कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। जो संबंध अभिधे प्रयोजन है ये क्या है, कृष्ण से हमारा संबंध, अभिधे क्या है कृष्ण भक्ति, और प्रयोजन क्या है प्रेम, ये तीनों के तीनों महाधन है और इसको केवल हम गुरु की आज्ञा का पालन करके ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को ये जानने का प्रयास करना है कि किस प्रकार से भक्ति ही पूर्ण रूप से शुभकारी है। सिंधु गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि भक्ति के छह लक्षण हैं शुद्ध भक्ति के, और पहले दो लक्षण क्या हैं, क्लेशाग्नि और शुभता। क्लेशाग्नि का अर्थ है कि सारे के सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे, और शुभता का अर्थ है कि हमारे जीवन में सब शुभ होगा। कैसे शुभ होगा इसको बताया गया कि किसी भी चीज को मानने के लिए शुभ है उसके चार मापदंड हैं। पहला कि इससे सबको लाभ होता है, दूसरा ये सबको आकर्षित करे, तीसरा ये सद्गुण उत्पन्न करे, और चौथा ये उत्कृष्ट आनंद प्रदान करने वाला हो। जिस वस्तु में, जिस घटना में, जिस परिस्थिति में ये चार लक्षण है उसको शुभ बताया गया है। पहला क्या है, सबको लाभदायक करे। तो देखते हैं क्या भक्ति सबके लिए लाभदायक है, किस किस के लिए लाभदायक है, सभी के लिए और हमारे लिए भी। बताया गया है कि जिस पेड़ से हम फूल तोड़ के राधा राधिका रमन जी के चरणों में लगाते हैं उस पेड़ का भी उद्धार हो जाता है। देखिए कितना शक्तिशाली है। कीर्तन में हम तालियां बजाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में जितने भी पाप हैं वो उड़ के चले जाते हैं, हाथों की रेखाएं चेंज हो जाती हैं, है ना। हरि नाम के गुणगान में हरि नाम हमारे सारे प्रकार के पापों को क्षय कर देता है। पाप ताप सब दूरे जावे, सार मोए संसार हबे, आर कोनो भय नहीं रबे, डूबे सुखेर पथारे। ये बौद्ध संगीत में गीत है। भगवान के नामों का गान करने से सभी प्रकार के पाप, सभी प्रकार के दुख दूर भाग जाते हैं, और ये पूरा का पूरा संसार हमारे लिए सारमय बन जाता है, कोई डर नहीं रहता और हम पूर्ण रूप से शुद्ध आनंद में डुबकी लगाते हैं। इसके बाद पद्यावली में रूप गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब भी कोई भगवान के नाम का जप करने की इच्छा रखता है, एक नया व्यक्ति आया उसको बोला कि आप भगवान के नाम का जप करेंगे, या उसने सबको देखा, उसके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान के नाम का जप करूंगा। केवल इच्छा प्रकट होने से क्या होता है, जो पाप है वो डर से कांपना शुरू कर देते हैं कि अब तो हम गए, और जो भौतिक भ्रम की महिमा है वो तो बेहोश हो जाती है, एकदम फेंट हो जाती है। यमराज जी के जो सेक्रेटरी हैं चित्रगुप्त जी, वो इतने खुश हो जाते हैं कि उस व्यक्ति के जो चरण के जो नाखून होते हैं उनको बड़े आदर सत्कार से देखना शुरू कर देते हैं। और जो ब्रह्मा जी हैं वो आरती की थाली लेकर तैयार हो जाते हैं इसकी आरती उतारने के लिए। किसी हृदय में केवल इच्छा उत्पन्न होने मात्र से ही कि मैं हरि नाम का जप करूंगा, ये कितना लाभदायक है। और हम देखते हैं जिस परिवार में एक भी भक्त हो गया तो नरसिंह भगवान क्या गारंटी दे रहे हैं, उसकी कम से कम 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, सबके लिए लाभदायक है। और हमने देखा भी है कि जब भक्तों के परिवार के जब उनके घर वाले शरीर छोड़ते हैं, हालांकि उनके घर वाले भक्त ना भी हों लेकिन बहुत सुंदर ढंग से वो शरीर छोड़ते हैं। एक बार परम पूजनीय गिरिराज स्वामी महाराज यहाँ आए थे और उन्होंने कहा भक्तों के माता पिता को उनके सौभाग्य का तब मालूम चलेगा जब वो अंतिम समय में शरीर छोड़े होंगे, तब उनको मालूम चलेगा कि वो कितने सौभाग्यशाली है। पिछले एकादशी के दिन ही इस ग्रेस मोहनराव प्रभु जी के पिताजी गोवर्धन प्रभु ने शरीर छोड़ा। गोवर्धन प्रभु अपने आप में बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत ही सुंदर भक्त, काफी अच्छी उनकी साधना और बहुत अच्छा उनका आचरण, बहुत सुंदर सेवा कर रहे थे। और कुछ समय के लिए वो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो ग्रेस मोहन प्रभु उनसे गए और उनसे पूछा, उन्होंने उनके बेड के सामने राधा पार्थ साथी का लेमिनेशन लगाया और उन्होंने पिताजी से पूछा आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं भगवान के? तो पता क्या जवाब दिया, उनके ऑक्सीजन लगी हुई है, सांस नहीं दिया जा रहा। और गोवर्धन प्रभु उनका नाम था, उन्होंने उत्तर दिया नहीं मुझे तो इस समय हर तरफ कृष्ण का ही दर्शन हो रहा है। और फिर यही नहीं बोला, बोला ये लेमिनेशन तो बहुत छोटी है, इसमें तो भगवान कैसे आएंगे, भगवान तो बहुत बड़े हैं। ये उस परिस्थिति में आप बोलना आप सोच भी नहीं सकते, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते वो परिस्थिति कितनी दुखदायी होती है। वो तो हम जब एक्सपीरियंस करेंगे तब हम किसी को बता भी नहीं पाएंगे, देख सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वो कह रहे हैं मुझे हर तरफ कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, एक तो अपनी उनकी खुद की भक्ति का प्रभाव, ऊपर से उनके पुत्र की भक्ति का प्रभाव, तो सबके लिए लाभकारी है भक्ति करना। हम लोग इतना सौभाग्य है, हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की शरण में है, एक महाभागवत की शरण में आते हैं वो सारे नक्षत्रों की स्थिति बदल देते हैं। जो जो शक्ति देवताओं के पास भी नहीं है, देवता लोग तो ऑब्लाइज्ड हैं, जो कर्म फल है वो देना ही देना है, लेकिन महाभागवत हमारे कर्म फलों को बदल सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं प्रीचिंग मीन्स मेकिंग अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट, प्रचार का अर्थ है दुर्भाग्यशालियों को सौभाग्यशाली बनाना। हम लोग गीता का वितरण करते हैं, किसी व्यक्ति ने गीता को छू भी लिया उसके सौभाग्य का उजागर हो गया, और किसी ने घर में जाकर गीता को रख भी दिया उसका घर एक मंदिर बन गया, क्योंकि भगवान के शब्द और भगवान में कोई अंतर नहीं। ये कितनी कितनी ज्यादा सबके लिए लाभदायक भक्ति। और जैसे कि एक बारी यूक्रेन में टेम्परेचर चला गया -23°C, और यूक्रेन मंदिर के अध्यक्ष ने बोला सब भक्तों को, सब ठिठुर रहे थे, बड़ा अजीब सा वातावरण हो रहा था, बोला चलो सब बाहर संकीर्तन करते हैं, उनकी इच्छा नहीं हो रही थी, बोलो चलते हैं सब, जबरदस्ती पुश किया सबको ले गए, और इतनी ठंड में संकीर्तन शुरू किया, बड़े तो बहुत ढीला ढीला चल रहा था, धीरे धीरे जोश आया और भक्त लोग उत्साह से कीर्तन करने लगे बहुत जोर से। तभी वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति आया और भक्तों को धन्यवाद देने लगा, कहता धन्य है आप, धन्य है, ऐसे वातावरण में, ऐसे डिप्रेसिंग वातावरण में आपने मेरा उत्साह बढ़ा दिया, मुझे जीवन में आशा दिला दी, आप लोगों के उत्साह को देकर मुझे जीवन में आशा प्राप्त हुई। तो जब हम लोगों के लोग उत्साह से कीर्तन करते हुए देखते हैं, हर प्रकार की अशुभ जो घटनाएं हैं, अशुभ परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, शुभ हो जाती है। आप सबका भी अनुभव होगा, चाहे किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, बाकी लोग ट्रेन स्टेशन में जाते हैं, ट्रेन 10 घंटे लेट है, बाकी लोग तो कोसते रहेंगे, बाप लोग क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे, आनंद ही आनंद है, सबके लिए लाभकारी। और दूसरा क्या है, सबको आकर्षित करती है ना। कितना अच्छा लगता है लोगों को, कुछ लोगों को इतना खुश देखकर। आजकल कोई खुश दिखाई देता ही नहीं है, कोई व्यक्ति हंसता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए कोई हंस रहा होता है तो पूछता है क्या बात है भाई, और वो ही बोलता है अंदर की बात है। ये वास्तव में हंसता हुआ कोई दिखता नहीं है, लेकिन भक्त लोग हमेशा हंस रहे। जब 7:30 बजे यहाँ गुरु पूजा में लोग नाच रहे होते हैं तो बाहर से लोग देखकर हैरान होते हैं क्या हो क्या रहे हैं। और कई लोग नए नए आकर का मुंह खुला खुला रहते हैं, क्या है इसने नाच रहे, क्यों हो क्या रहा है, कौन सी दारू का पान किया है, क्या है? इतनी खुशी क्यों है इनको, है ना। तो ये इतना आकर्षक है हरि नाम का कीर्तन करना, और विशेष करके हम ट्रेन गाने में जाते हैं, ट्रेन्स में कीर्तन करते हैं, सब बड़े आकर्षित होते हैं। और कीर्तन करने के बाद जब हम अपने प्रसाद का डब्बा खोलते हैं तो सर्व आकर्षक है। और देखते हैं कि ये साधु लोग क्या खाते हैं, देखते हैं जरा, है ना, एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती है उनको। बेचारे खाएंगे कोई सूखी सब्जी, सूखी सी रोटी, लेकिन अब देखते हैं तो भव्यता को, हमारे ऐश्वर्य को देखकर आकर्षक। कृष्णा भावना आंदोलन बहुत आकर्षक है, इट अट्रैक्ट्स एवरीवन। जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल से गुजर रहे हैं तो पशु भी आकर्षित हो गए हरि नाम से, और पशुओं के बीच में जो द्वेष है, शत्रुता है, सब शुभ है। सबका सब समाप्त हो गया और सब आपस में आलिंगन कर रहे हैं, एक दूसरे का चुंबन कर रहे हैं। तो इसलिए ये भक्ति सर्व आकर्षक है। तीसरा लक्षण क्या होना चाहिए, सद्गुण उत्पन्न करते हैं, है ना। प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि हो सकता है भारत में कोई गरीब किसान भी हो, लेकिन वो कृष्ण भाना भावित है तो कम से कम 4 नियमों का पालन कर रहा होगा। और हम देखते हैं ऐसा व्यक्ति जो 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा, दिखने में बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, फिलोसफर हो, लेकिन उसकी कितनी दुर्गति है ना। आज से 15 या 16 साल पहले इस देश चैतन्य चरण प्रभु ने अपनी मैगजीन स्पिरिचुअल साइंटिस्ट में एक आर्टिकल लिखा था कि चाय के कप के ऊपर, चाय के ऊपर, कि भारत में इतने लोग चाय पीते हैं, अगर एक दिन सब लोग चाय ना पिए तो इतने लक्ष्मी को बचा लेंगे, इतना धन बचा लेंगे कि पूरे भारत के ऊपर जो ऋण है वो ऋण चुकता सकते हैं। एक दिन अगर पूरे भारत के लोग चाय ना पिए, ये 15 साल पहले का डाटा है। अब चलो ऋण भी बढ़ गया होगा लेकिन चाय की कॉस्ट भी बढ़ गई होगी, तो अनुपात वही रहेगा। यानी कि भक्ति से सद्गुण अपने आप विकसित होते हैं। और सद्गुण कब ज्यादा विकसित होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में। जब भक्त लोग विपरीत परिस्थितियों में हरि नाम की शरण लेते हैं तब सद्गुण विकसित होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में अगर हम रिएक्ट करेंगे तो सद्गुण तो विकसित होंगे नहीं, नए कर्म हम और उत्पन्न कर देंगे। इसलिए जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं वो हमें अवसर देती हैं कि अपने अंदर अच्छे गुणों को हम विकसित कर सके, सहनशीलता को विकसित कर सके, विनम्रता को विकसित कर सके। इससे वो जानकर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं मेरे अंदर तो अब सद्गुण है, जो भक्ति नहीं कर रहे उनके अंदर अवगुण ही अवगुण है। नहीं, अगर इस तरह का भाव आएगा तो हम भगवान के कभी प्रिय नहीं बन पाएंगे, है ना। आई एम बेटर, ये भाव बहुत खतरनाक है भक्ति के लिए। अगर ऐसा सोचेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, भगवान की आंखों में बिटर हो जाएंगे, कड़वे लगेंगे भगवान को, मीठे नहीं लगेंगे। तो इस भावना से बचना है और अपने अंदर वास्तविक सद्गुणों को विकसित करने का प्रयास करना है। और चौथा लक्षण है शुभ होने का, क्या ये उत्कृष्ट आनंद प्रदान करने वाला है, उत्कृष्ट आनंद। हम देखते हैं कई बार मन में भाव आता है कि कुछ इंद्र तृप्ति करने बहुत हो गया, इंद्रियों को संयम करना, शायद थोड़ी सी इंद्र तृप्ति करके थोड़े नियम तोड़ के सुख मिल जाएगा। एक अनुभव क्या होता है, जितना हम इंद्रियों को खुला छोड़ते हैं उतना ही हमारे दुख का कारण बढ़ते हैं, और जब भी हम इंद्रियों को संयम कर लेते हैं तो वी फील लाइक अ किंग, एक राजा की तरह हम अनुभव करते हैं कि यस मैं अपनी इंद्रियों को, उस प्रलोभन को मैं सह पाया। तो ये भक्ति ही पूर्ण रूप से शुद्धता है। लेकिन ये लक्षण प्रकट होते हैं, रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं, जब हम निष्ठा की स्टेज पे होते हैं। निष्ठा के स्टेज में ही क्लेशाग्नि और शुद्धा ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। निष्ठा से पहले जो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज है, भजन क्रिया है, इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है साधक को। तो हमारे जीवन में बहुत से उथल पुथल होंगे। भगवान गीता में बताते हैं, ये शाम तुम गता पापा जनानाम पुण्य कर्मणाम त्वे द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़। दृढ़ता से भक्ति करने के लिए सभी प्रकार के पापों से मुक्त होना पड़ेगा, तभी हम दृढ़ता से भक्ति कर पाएंगे। तो प्रश्न उठ सकता है कि हम निष्ठा की स्थिति तक कैसे पहुंचे। हमारे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, इतने उथल पुथल होते हैं, हम उसी में भ्रमित हो जाते हैं। हमें तो लगता है नहीं कि हमारे क्लेश खत्म हो गए, अभी तो लगता है नहीं जीवन में कुछ शुभ हो रहा है, और जब से चैंटिंग शुरू किया तो पता नहीं क्या क्या हो गया। कई लोग बोलते हैं, भक्तों को बुलाते हैं, नया बिजनेस खोल रहे हैं, आप आइए अपने चरण कदम डालिए। और भक्त लोग डालते भी हैं कई बार चरण कदम, एक गारंटी नहीं है बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि अभी तक हम सोच रहे हैं कि बिजनेस चल गया तो ये शुभ है, और बिजनेस नहीं चला तो क्या है, अशुभ है। लेकिन वास्तव में क्या है, कुछ भी शुभ नहीं है। बस शुभ केवल क्या है कि हम भक्तों के संग में रहे, भगवान के नाम का जप करते रहे। तो कैसे हमारे जीवन जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कैसे हम इसको पार करके निष्ठा के स्टेज में पहुंचेंगे और पूर्ण रूप से शुद्धता और क्लेशाग्नि के लक्षणों का हम अनुभव कर पाएंगे। तो इसके लिए भक्तिनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि अनर्थ निवृत्ति बहुत तीव्रता से होगी अगर पूरे उत्साह से हम गुरु के आदेशों का पालन करेंगे। पूरे उत्साह से, उत्साह से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्साह से श्रवण करेंगे, उत्साह से कीर्तन करेंगे। अभी कोई प्रश्न पूछ सकता है, उत्साह कैसे बना रहेगा? तो उत्साह बना रहेगा हम अपने हृदय में हमेशा कृतज्ञता का भाव रखें। कृतज्ञता जब तक है तो हम हमेशा अपने आप को भगवान को, गुरु को, भक्तों को धन्यवाद देते रहेंगे कि आपकी कृपा से मैं यहाँ पे हूँ। और भक्ति में हमेशा उत्साह बना रहेगा, एक नयापन बना रहेगा। और जब कृतज्ञता समाप्त होने शुरू हो जाती है तो क्या होती है, हम चाहते हैं कि हमें फैसिलिटीज मिले, हमें पोस्ट मिले, हमें पोजिशन मिले, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और फिर भक्ति में उत्साह कम होता जाता है। और प्रश्न है कृतज्ञता कैसे बनी रहे, इतने साल हो गए कब तक थैंक यू बोलते रहे भगवान को। तो हर ग्रेस रुक्मिणी माता जी एक बार यहाँ पे आई थी हमारे मंदिर में, अगर आप किसी को याद हो तो, उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई थी कि हमारे हृदय में हमेशा कृतज्ञता का भाव रह सकता है अगर हम भक्ति की क्रियाओं को, साधना भक्ति को पूर्ण चेतना से करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, मैकेनिकली नहीं करते। अगर मैकेनिकली करते रहेंगे, मैकेनिकली जप कर रहे हैं तो पता नहीं जप की महिमा क्या है, पता नहीं हरिनाम की क्या महिमा है। मैकेनिकली भक्तों का संग करते रहेंगे, भक्तों की महिमा को नहीं जानेंगे। मैकेनिकली प्रसाद का सेवन कर रहे हैं, जानते नहीं कि प्रसाद की क्या महिमा है। तो कृतज्ञता धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसलिए हमेशा सचेत रहते हुए हर क्रिया को करेंगे तो देखेंगे कितना बड़ा सौभाग्य है। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा, हमें भगवान का प्रसाद प्राप्त होता है, भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त होता है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं स्पिरिचुअल वेलबींग इज फॉलोड बाय मटेरियल वेलबींग। अगर आध्यात्मिक रूप से आप तुष्ट हो तो भौतिक रूप से अपने आप तुष्ट हो जाओगे। इसका उदाहरण क्या है, भक्त लोग यहाँ पे हैं, सारी दुनिया हैरान है, इतना अच्छा खा कैसे लेते हैं, इतनी चीज उनको सुविधाएं कैसे मिल जाती है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमेशा दिन में कम से कम 2 या 3 बारी गरम गरम प्रसाद हमें मिल जाता है। और ऐसे देखिए छोटा पूर्ण रूप से अच्छा आहार पूरा कैसे अपने आप, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से अगर हम तुष्ट हैं तो भौतिक रूप से अपने आप भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। तो कृतज्ञता हर कदम पे हम देखें भगवान की कृपा को, और ध्यान पूर्वक हर कार्य करेंगे भक्ति के, तो निश्चित रूप से कृतज्ञता बनी रहेगी, भक्ति में उत्साह बना रहेगा। और बड़े उत्साह से जब हम भजन क्रिया करेंगे, अनर्थ निवृत्ति बहुत तीव्रता से होगी, हम निष्ठा के स्तर पे आएंगे और ये शुद्धता लक्षण हमारे जीवन में प्रकट होंगे। टू समराइज, हम अपने जीवन में आज वामन देव जी के पढ़ा कि जब वामन देव प्रकट हुए सारे के सारे नक्षत्र शुभ स्थिति में हैं। हम भी अपने जीवन में अपने नक्षत्रों को शुभ स्थिति में ला सकते हैं, इस पूरे संसार में हम शुभ स्थिति ला सकते हैं। कैसे, भगवान को उपस्थित करके, भगवान को भी हम उपस्थित कर सकते हैं भगवान के नाम के कीर्तन और प्रचार के द्वारा, भगवान के वाणी के का पालन करके, इसका प्रचार करके, भगवान के लीलाओं के श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। और हमारा प्रयास इस मनुष्य जीवन पाके इन भौतिक परिस्थितियों को बदलने का नहीं, नक्षत्रों की स्थिति को आर्टिफिशियल तरीके से बदलने का नहीं, बल्कि क्या करें, अपने चेतना को उत्कृष्ट करें, हमेशा आध्यात्मिक प्रकृति के अंदर रहें, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार कार्य करें, तो हमारे जीवन में सब शुभ ही शुभ घटित हो। हरे कृष्ण।
धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी मेरा प्रश्न ये था, जैसे कि आपने बताया जैसे कि जो संगम सन्स होते हैं परिस्थितियों के हिसाब से कैसे रिएक्ट करते हैं उस हिसाब से वो फ्री विल का सही यूज है, ये तो होगा कि कैसे रिएक्ट किया, पर फिर इसके बाद फिर एक भक्त के जीवन में फिर प्लानिंग की प्रोएक्टिवनेस की क्या पोजिशन क्या स्थिति रह जाती है, कि फिर स्पिरिचुअल प्लानिंग का फिर प्रोएक्टिवनेस का मतलब क्या रोल है। मतलब
हाँ अच्छा प्रश्न है, थैंक यू। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि हम परिस्थितियां आएंगी और रिस्पॉन्ड करेंगे, ये तो ठीक हो गया, लेकिन क्या हम कोई प्लानिंग ना करें, कोई प्रोएक्टिव ना हो? निश्चित रूप से जो ना हो, जो गुरु के आदेश मिले हैं उसको पूरा करने के लिए हम सारी योजनाएं बनाएं, लेकिन उन योजनाओं को पूरा करते हुए जो तरह तरह की परिस्थितियां आएंगी उसमें जो हमारा रिस्पॉन्ड होना चाहिए वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। कुछ भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए हम पूरी योजना बनानी चाहिए, अपने मन और बुद्धि को उसमें एंगेज करना चाहिए, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है, परिस्थितियां कुछ अनुकूल भी आएंगी कुछ प्रतिकूल भी आएंगी, उसमें क्या हमारा रिएक्शन होगा वो निर्भर करता है।
मेरा प्रश्न इसी कंटिन्यूएशन में, मैं उनमें एक प्रसंग आया था जब श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी में जा रहे थे और साथ में उनके साथ तीन भक्त और थे, और चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि तुम अपने साथ कुछ लाए हो, और वो मना करते हैं तीनों भक्त, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर उदाहरण देते हैं अगर किसी के डेस्टिनी में है तो उसको स्वयं मिल जाएगा, और किसी के डेस्टिनी में नहीं है जब जितना भी ऑपुलेंट प्रसाद है उसको फीवर आ जाएगा कुछ हो जाएगा उसको नहीं मिलेगा, तो इस प्रसंग को कैसे समझें कि इसमें महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए थे कि वो कोई भी भक्त अपने साथ कुछ नहीं लेके गए और यहाँ फिर प्रोएक्टिवनेस।
उनका आपका प्रश्न है कि महाप्रभु के साथ तीन भक्त गए और खाली हाथ गए तो महाप्रभु इससे प्रसन्न हुए, जबकि वो महाप्रभु के सेवक हैं, महाप्रभु की सेवा के लिए को समान ले आ सकते थे। इसमें उनसे गोविंद घोष जी की घटना भी देखते हैं, गोविंद घोष जी महाप्रभु के सेवक थे और उन्होंने हाथेकारी रख ली थी, महाप्रभु को बोला कि अगले दिन भी दे दी थी, महाप्रभु ने कहाँ से आई, बोले कल की रखी हुई है, महाप्रभु ने जाओ ग्रस्त आश्रम में, उन्होंने तो गुरु की सेवा के लिए किया। तो महाप्रभु यहाँ पे सन्यासी की लीला कर रहे हैं, महाप्रभु ने सन्यास शिरोमणि, और सन्यासी का अर्थ है पूर्ण रूप से आश्रित, कोई फ्यूचर की योजना नहीं, तो वो उदाहरण स्थापित करने के लिए महाप्रभु लीला कर रहे हैं, और ये अपने सेवकों से जो कि वैराग्य आश्रम है उनसे अपेक्षा करते हैं पूर्ण रूप से कैसे निर्भर रहा जाए that aspect। तो लेकिन इसके अलावा देखते हैं गुणिशा मार्जिन है तो महाप्रभु एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबसे सब योजनाएं बनाएं कैसे क्लीनिंग करनी है, रथ यात्रा है महाप्रभु पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इतनी संकीर्तन पार्टीज होंगी, ये आगे नृत्य करेंगे, ये बजाएंगे, ये गाएंगे, सो ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर रहे हैं, प्लानिंग पूरी कर रहे हैं, एज अ सन्यासी वर्सेस टीचिंग अस कंप्लीटली डिफरेंट।
थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि आपने बताया कि जो क्लेशाग्नि और शुद्ध लक्षण है ये निष्ठा के लेवल पर जब आ जाएंगे तब प्रकट होते हैं, और साथ ही साथ रहा कि ये शाम पंथ गतम पापम जनानाम पुण्यकम, तो जब तक व्यक्ति निष्ठा के लेवल पर नहीं है और वो अनर्थ निवृत्ति से जूझ रहा है उसी के चलते वो कई बार जो भक्ति की प्रतिकूल चीज़ें हैं उनमें भी इन्वॉल्व हो जाता है और तरह तरह से मतलब सेंस गेटिवेशन भी करता है, तो इससे और उसके पापों का जो है बढ़ावा होगा उसमें, तो फिर उसके लिए निष्ठा के लेवल पे आना कैसे जल्दी संभव है?
इसलिए जो बलदेव विद्याभूषण जी श्लोक की कमेंट्री बताते हैं तेषां तु अन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणा, तो पुण्य कर्म क्या है, कर्मों के नियम के अनुसार एक पाप को हम पुण्य से नहीं काट सकते, ये जो पुण्य कर्म है ये वो कार्य है जिससे कि पूर्ववर्ती आचार्य प्रसन्न, इसलिए सारी कृपा वैष्णव कृपा है मुख्य हमारा शास्त्र है, शस्त्र है। वैष्णव कृपा प्राप्त करते रहेंगे तो इस चीज से हम जल्दी से निकलेंगे, नहीं तो अनर्थ निवृत्ति बहुत कष्टदायक रहती है। वैष्णव की सेवा, वैष्णव की कृपा, उनको ऐसे कार्य करना जिससे वो प्रसन्न हो, उनकी आज्ञा को बनाए रखे, तो इससे हम इस अनर्थ निवृत्ति को। लास्ट क्वेश्चन,
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं एक जिज्ञासा करना चाहता था कि जैसे आपने बताया था कि जैसे प्रभुपाद जी थे, उन्होंने किसी स्थान को भी मंदिर बनाया और वहाँ पर विग्रहों को स्थापित किया, टीचिंग मूवमेंट स्टैब्लिश किया। लेकिन एक भक्त मैं जिनसे मिला था, मैं उज्जैन गया था, तो वो बता रहे थे कि प्रभुपाद में वैसे शक्ति थी लेकिन भगवान ने जो है हमें ज्ञान दिया, जैसे वास्तु का ज्ञान दिया, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं किसी दिशा में खड़े होकर मुझे उनको ज़्यादा प्रसन्नता होती, तो उस हिसाब से मंदिर का निर्माण होना चाहिए या हमें, तो इस चीज़ का हम कितना ध्यान रखते हैं या नहीं रखते, और कितना रखना चाहिए, और जैसे क्या ये ठीक है कि कहीं पर भी श्रवण कीर्तन हो या मंदिर की स्थापना हो जाए तो ठीक है, या फिर जैसे भगवान ने ज्ञान दिया हमें इसका इस्तेमाल करने के लिए तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ के बारे में।
प्रभु जी का प्रश्न है कि वास्तु कला का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद जी ने तो शवा ग्रह पे मंदिर बना दिया, तो कितना ठीक है इसका ध्यान रखना ना रखना, तो बड़ा डेलिकेट प्रश्न है ये। और अभी इस कौन में भी कई भक्त लोग वास्तु को मानते हैं, कई लोग वास्तु को नहीं मानते, कई लोग ज्योतिष का थोड़ा उपयोग करते हैं, कई भक्त लोग नहीं करते, तो ये दोनों के दोनों जो बातें हैं, वास्तु हो या ज्योतिष विज्ञान, इसको भक्ति के लिए प्रयोग करने के लिए बहुत परिपक्वता चाहिए, बहुत मैच्योरिटी से, क्योंकि ये इतने लुभावने हैं और इतने शॉर्टकट्स दिखते हैं कि व्यक्ति अपने पद से भ्रष्ट हो सकता है। और ये उपवेद है, ये मेन वेद नहीं है, इनको कैसे भगवान की सेवा में लगाना है इसके लिए बहुत परिपक्व होता चाहिए। तो अंटिल अनलेस वो मैच्योर गाइडेंस हमारे पास नहीं है तो इससे दूर ही रहना चाहिए, अन्यथा प्रभुपाद जी ने जितने भी मंदिर स्थापित कर किए उसमें कोई इतना ध्यान नहीं दिया क्या वास्तु है क्या ज्योतिष। प्रभुपाद ने सीधा स्थापित किए और पूरा श्रवण कीर्तन पर बल दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, भगवान की एक मंदिर बनाने का उद्देश्य है कि भगवान को अच्छी से अच्छी अनुकूल से अनुकूल परिस्थितियाँ दें, अनुकूल से अनुकूल दिशाएं दें, तो ये भक्ति का भाव है। और देख सकते हैं अगर उसमें अकोमोडेट हो जाता है और सब कुछ ठीक है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत परिपक्वता चाहिए। तो सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंद।